इनायत की अम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनका बीपी लो हो गया था। इनायत की चाची उनके हाथों को मसल रही थी और इनायत उनके पैरों की मालिश कर रही थी। इनायत अपनी अम्मी को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बाकी सारे रिश्तेदार दरवाजे के पास खड़े थे और उन्होंने जब इनायत की अम्मी की तबीयत खराब होते हुए देखी तो वो सभी परेशान हो गए थे। इनायत के चाचू ने सभी रिश्तेदारों से कहा, ये अचानक से क्या हो गया है? कल सुबह तो रियाज और उसके दादाजान रिश्ता पक्का करके गए थे, फिर शाम तक उन्होंने शादी से इनकार क्यों कर दिया है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। भाभी जान की भी तबीयत अचानक खराब हो गई है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उनको जब से इस बारे में पता चला है तब से ही उनका बीपी लो है और उन्हें चक्कर आ रहे हैं। ऐसे में तो उनकी तबीयत बिगड़ती चली जाएगी। सब लोग रियाज के इस तरीके से अचानक से मना करने पर हैरान भी हो रहे थे और उन्हें इनायत की अम्मी की फिक्र भी हो रही थी। इनायत की चाचा ने 2-3 बार रियाज को कॉल बैक भी किया था, लेकिन 2 बार तो रियाज ने फोन ही नहीं उठाया था और 1 बार पारस ने कॉल उठाकर ये कह दिया कि रियाज मीटिंग में बिजी है। वो सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे थे, लेकिन इनायत तो अलग ही परेशान थी। जब उसे ये पता चला कि रियाज ने सामने से शादी से इनकार कर दिया तो उसका दिल खुशी से भर गया था। उसके चेहरे पर अचानक से चमक आ गई थी। पर जब उसने सीढ़ियों के पास कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो वो हैरान हो गई। सबने उस तरफ देखा तो वहाँ पर इनायत की अम्मी बेहोश पड़ी हुई थी। शायद उसकी अम्मी ने सब कुछ सुन लिया था। इनायत जल्दी से अपनी अम्मी के पास जाती है और उन्हें संभालती है। सब इस हादसे से परेशान हो गए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रियाज ने अचानक से शादी से मना क्यों कर दिया था। इनायत अपनी अम्मी को देखते हुए अपने मन में कहती है, नहीं अम्मी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती है। पहले अब्बू और अब आप, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप इसी बात से दुखी है ना कि रियाज ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है? अगर ऐसी बात है तो मैं रियाज से बात करूंगी और पता करूंगी कि उसने अचानक से ऐसा क्यों किया है, और अगर वो सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो कानूनी तौर पर अभी भी मैं उसकी बीवी हूँ। उसे मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो ऐसे कैसे सबके सामने मुझसे शादी के लिए इजहार करके बाद में इनकार कर सकता है? क्या वो नहीं जानता है कि ये किसी लड़की के लिए कितनी बड़ी बात होती है और उसके परिवार के लिए ये कितने शर्म की बात होती है कि इतने बड़े परिवार में उनकी बेटी का रिश्ता होता है और फिर टूट जाता है? ऐसे में उस लड़की के दामन पर जो दाग लगता है वो दाग कोई नहीं मिटा सकता है। फिक्र मत कीजिए अम्मी, मैं रियाज से इस बारे में बात करूंगी। अपनी अम्मी को चाचा चाची और परिवार वालों के भरोसे छोड़कर इनायत फिर से मुंबई के लिए बस पकड़ती है और निकल जाती है। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था और आंखों में सवाल था कि अगर उसे शादी से इनकार ही करना था तो फिर इतना सब कुछ ड्रामा उसने किया ही क्यों था। रास्ते में रुककर उसने रियाज को कॉल भी किया था, लेकिन फोन पारस ने उठाया था और उसने इनायत से ये कहा कि रियाज ऑफिस में नहीं है बल्कि घर जा चुका है। इनायत की घबराहट और बढ़ जाती, क्योंकि रियाज का घर यानी कि हेल मेंशन, जहां जाना इनायत के लिए दोजख के बराबर है। इनायत फिर से हेल मेंशन के सामने खड़ी थी। उसके सामने फिर से वही काले सरियों वाला बड़ा सा दरवाजा था जिसकी दूसरी तरफ उसे दोजख नजर आ रहा था। इनायत ने कस के आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपने कदम हेल मेंशन की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो उस बड़े से दरवाजे के पास पहुंचती है, गार्ड्स जल्दी से उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं। इनायत को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जैसे जैसे वो अंदर जा रही थी, गार्ड्स, माली और वहां पर दिख रहे नौकर सब इनायत को सलाम कर रहे थे। इनायत उन सबको देखते हुए दरवाजे के पास पहुंचती है। उसने बिना किसी की इजाजत के उस बड़े से दरवाजे को खोल दिया और घर के अंदर दाखिल हो गई। ये घर उसकी उस दर्दनाक रात को फिर से जाहिर करता है जिसे वो याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज वो फिर से इसी चौखट पर खड़ी है। एक औरत जिसने सिंपल सा सूट सलवार पहना हुआ था और उसने दुपट्टे को सर पर हिजाब की तरह ओढ़ रखा था, वो इनायत के पास आते हुए कहती है, तुम्हारा नाम इनायत है? इनायत उस औरत को देखती हैं जो उम्र में उसकी अम्मी के बराबर की थी और उसके चेहरे पर सादगी और मुस्कुराहट दोनों ही थी। इनायत ने उन्हें देखकर हाँ में सर हिलाया और अपना हाथ उठाकर उन्हें सलाम किया। उस औरत ने भी मुस्कुराते हुए इनायत के चेहरे पर अपना हाथ फेरा और उसे देखकर कहा, माशाल्लाह, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। इनायत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। इनायत को हैरानी से खुद को देखता पाकर उस औरत ने कहा, मेरा नाम सबा है, रियाज की परवरिश मैंने ही की है, वो मुझे अपनी अम्मी की तरह मानता है। तुम यहाँ रियाज से मिलने आई हो ना? इनायत घबराते हुए उन्हें देखती हैं और हाँ में सर हिलाती है। उन्होंने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऊपर जाकर पहला कमरा, वो रियाज का है। इनायत हाँ में सर हिलाती है और फिर अपने दुपट्टे को सही करते हुए वो ऊपर कमरे की तरफ बढ़ जाती है। इनायत जैसे ही रियाज के कमरे के सामने जाकर खड़ी होती है, वैसे ही उसने एक गहरी सांस ली और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उसने कमरे पर नॉक नहीं किया था और ना ही उसने नॉक करना जरूरी समझा था। रियाज इस समय विंडो के सामने खड़ा था और अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वो पीछे पलट कर देखता है और अपने सामने इनायत को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसने फोन पर कहा, मैं बाद में बात करता हूँ। उसने अपना फोन बंद किया और बेड के कोने पर फेंक दिया। लेकिन रियाज को देखकर इनायत की धड़कन अचानक से बढ़ गई थी और उसकी आंखों के सामने जिब्रान का चेहरा आ जाता है। जिब्रान ने उसे जो कुछ भी कहा था उन सब बातों ने उसे हिम्मत दी थी और वो रियाज के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी।